कैसे हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट हिंदी उर्दू शायरी अपने दोस्त अमान जावेद के साथ। होता क्या है ना कि जब हम घर पे अकेले बैठे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, बेमकसद होते हैं, तो वो माहौल, वो जो मौसम है आलस का, लेजीनेस का, वो हम पे बहुत भारी हो जाता है और हमें और मन नहीं करता कि हम कुछ भी करें या बस ऐसे बैठे ही रहें। तो कल की बात है कि मैं ऐसे बैठा हुआ था घर में और मैंने सोचा कि यार क्या ही करूं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अचानक से आता है यार, आज तो बुक फेयर का लास्ट डे है, नेशनल बुक फेयर का, जो मेरे घर के पास ही है लखनऊ में, बलमपुर गार्डन वहाँ पर लगा हुआ था। मैंने कहा घर के पास है और मैं ना जाऊँ तो यार मैं बहुत सर पढ़ूँगा अपना। तो मैं उठा, फौरन अपना तैयार हुआ, रेडी हुआ और सीधा नेशनल बुक फेयर बलरामपुर गार्डन लखनऊ। वहाँ मैं गया तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, मतलब गेट से एंटर होते ही मुझे लोग मिलने लगे, ऐसे लोग जिनसे मैं बातचीत कर पाऊँ, जिनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, वाइब कर पाऊँ। एक मुझे वहाँ पे अमित करके मिले, जो दूरदर्शन के थे, वो एक किताब खरीद रहे थे कि सफल माँ बाप कैसे बने। वो किताब मैंने उनसे मजाक में कहा कि जो है क्या ये जो किताब है सफल माँ बाप कैसे बने, ये क्या आप खरीद के अपने माँ बाप को गिफ्ट करने वाले हैं? तो कहने लगे, अरे नहीं यार, लास्ट ईयर मैं भी फादर बना हूँ तो मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तो काउंटर पे जो भैया बैठे थे वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगे। तो मैंने कहा क्या बात है, मतलब अभी अभी ये इतना ताज़ा इनका मामला है और अभी अभी ये एक फादर बने हैं और ये अभी से एक किताब परचेज कर रहे हैं जिसमें जो ये बताएगी कि सफल माँ बाप कैसे बने। तो मैंने कहा मैं तो इनकी जागरूकता पर फिदा हो गया, ये इतने जागरूक अगर अभी से हैं, इतनी परवाह कर रहे हैं ये, तो ज़रूर इनके बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश होगी, क्योंकि इनकी नीयत साफ है, इनकी मंशा अच्छी है, क्लीन है। तो खैर वहाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक हुआ, दूरदर्शन वाले अमित भैया से मिलकर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो देखा बहुत सारे लोग हैं और इतने लोग कि मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया कि बुक फेयर में इतने लोग होंगे। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होगा, इतना बुक लवर्स, इतनी तादाद में वहाँ पे इतना गज़ब का फुटफॉल होगा और तरह तरह की बुक्स हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस, राजकमल पब्लिकेशन वगैरह वगैरह, और रेखता की किताबें भी वहाँ पर मिल रही थी राजकमल पब्लिकेशन के ही स्टोर में, जो उनके काउंटर्स लगे हुए थे, जो उनका एरिया था, मतलब उन्होंने तो पूरा एक बड़ा सा एरिया ले रखा था अपना, जितना मतलब 3-4 बाकी बुक सेलर्स का मिला के हो रहा था। तो थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे हिंदी की किताबें कुछ मिल रही थी, बहुत सारी मिसलेनियस टाइप की थी कि कहानियाँ भी हो, शायरी भी हो, नहीं शायरी की किताबें मिल रही थी, मगर थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा था उनको, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे वहाँ जॉन एलिया की किताब और बशीर बद्र की किताब और मनोहर राणा हो गए, राहत इंदौरी हो गए, या जो नए लिखने वाले हैं, नए शायर हैं, तो उनकी भी किताबें बहुत मुश्किल से मुझे वहाँ दिख रही थी। वहाँ कहानियों की किताबें बहुत थी, तो मैंने कहा कि सिर्फ अफसाने मिल रहे हैं क्या, शायरी की किताब नहीं मिल रही भाई, हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तो कहने लगे शायरी की किताब के लिए आप थोड़ा आगे जाइए, आगे से राइट हो जाइएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो घूमते घूमते पहुँचे तो वहाँ पे हमको एक वकील साहब मिल गए, जो कम से कम हमसे उम्र में हम मुझसे होंगे वो कितने होंगे यार, मुझे लग रहा है कि 20 साल बड़े होंगे मुझसे, ठीक है, और हल्की हल्की सफ़ेद दाढ़ी और गाढ़ा रंग, छोटी कद काठी, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कान, एक संतुष्ट होने वाली मुस्कान। मुझे लगा यार कोई बुक रीडर है, कोई किताब पढ़ने वाला इतना खुश कैसे रह सकता है, कैसे दुनिया की परेशानियां सता नहीं रही, दुनिया के मसाइल क्या इसके जहनो दिल पर हावी नहीं हो रहे? तो मैं पौधी उनसे बात करने के लिए, मैंने कहा कोई मैंने कहा ऐसे ऐसे मतलब क्योंकि पहली बार मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि सर कोई किताब रिकमेंड कीजिए हिंदी में, मैं कोई अच्छी एक अच्छी से नावल ढूंढ रहा हूँ, शॉर्ट स्टोरीज नहीं नावल, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी गुनाहों के देवता बाय धर्मवीर भारती, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको बताया कि मैंने गुनाहों के देवता पढ़ी थी जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखी है, कुछ वैसी ही आप किताब बताइए कि वैसा ही मज़ा है मुझे, क्योंकि उस किताब में जो रस है और जो हिंदी पढ़ने में जो मज़ा आया है वो तो बस मैं बयान नहीं कर सकता। और उस तरह का मज़ा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि उस तरह का मज़ा तब आता है जब आप कोई बहुत अच्छा शेर पढ़िए, कोई बहुत अच्छी गज़ल पढ़िए और एकदम अंदर से आपके जज्बात उफान मारते हैं और आपके जहन का मौसम बदल जाता है। तो मैंने कहा वकील साहब कुछ वैसा कुछ बताइए, तो वो कहने लगे कि अरे यार तुमने क्या याद दिला दिया यार, मैं यहाँ 50-55 साल का हो गया हूँ और जो मैं थोड़ी सी दर्शन वाली किताबें ले रहा था, फिलोसफी की किताबें ले रहा था कि बुद्धा ने क्या कहा और अच्छी ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी के मतलब क्या। तुमने यार क्या याद दिला दिया, इतने साल पुरानी बात है यार। मैंने कहा कहने लगे जब मैं 20 बरस का था तब मैंने वो किताब पढ़ी थी, और वो किताब ऐसी है कि जो है बहुत आपको जज्बाती कर देगी। वकील साहब ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत से देखा था कि सामने वाली छत पे कोई लड़का होगा 16-17 साल का इलाहाबाद में, वो नॉवल पढ़ रहा होगा जो गुनाहों के देवता, उनका ऐसा कयास है, वो गैस लगा रहे थे और एक हाथ से वो टहल रहा है छत पे और वो एक हाथ में नॉवल पकड़ा किताब पकड़े और दूसरे हाथ से आंसू पोंछ रहा है और एक हाथ से किताब पढ़ के टहलते हुए पढ़ता जा रहा है किताब और दूसरे हाथ से आंसू पोंछता जा रहा है। सोचिए जरा। इसी तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कोई और लड़का ही था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का, तो वो ये किताब पढ़ने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, वो थोड़ा सा इतना इमोशनल हो गया था कि वो उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और मतलब उसके जहन पे इतना असर किया था इस किताब ने कि कुछ दिनों के लिए वो सबसे कट गया था। तो वही उन्होंने के वकील साहब ने कहा यार इसका नाम मतलब पागल कर देने वाली किताब है। तो मैंने कहा फिर भी बताइए कुछ वैसे ही बताइए। तो खैर उन्होंने उस तरह का मुझे रिकमेंडेशन तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दिखाया फिर मुझे उसका जो उन्होंने किताबें ली थी, जो 4-5-6 किताबें वो परचेज की थी वहाँ से, वो उन्होंने बताई, बल्कि दिखाई मुझे, क्योंकि उस वक्त मैं एक वीडियो ब्लॉग भी बना रहा था, मैंने वीडियो ब्लॉग डाला है अपने इंस्टाग्राम पर जो कि है वायरल शायर के नाम से। तो आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे और टाइप करेंगे VIRALSHAYAR तो आप मेरी प्रोफाइल दिखेगी। उस पर मैंने पूरा जो मैंने नेशनल बुक फेयर का अटेंड किया है उसको मैंने एक मिनट की रील के फॉर्म में एक वीडियो बना के अच्छे से क्यूरेट करके मैंने वहाँ पे डाला हुआ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसमें वकील साहब भी हैं जो मैं बता रहा हूँ वो भी हैं, तो उन्होंने मुझे सारी किताबें दिखाई। अच्छा बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। तो खैर फिर जाने का वक्त हो गया तो उन्होंने मेरे साथ एक सेल्फी ली और नंबर वंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ हमारा, ठीक है। मैंने कहा इलाहाबाद में होगा बुक फेयर तो मैं आऊँगा, तो आप मिलिएगा। कहने लगे ठीक है ओके मिलते हैं बिल्कुल बेशक। और उसके बाद से अब मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था तो मुझे लखनऊ के ही एक शख्स मिले और उन्होंने बताया कि उनकी भी एक बुक शॉप है लखनऊ के नदवे के पास, ओल्ड लखनऊ में, और वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी हिंदी में नॉवेल्स पढ़नी है, हिंदी में उनको कहानियाँ आसान हिंदी में पढ़नी है। तो मैंने देखा कि वो जो है लगभग उनके साथ जो आया था बंदा वो बेचारा पीछे स्टूल में बैठा हुआ था, वो आगे किताबें देख रहे थे, दो तीन किताबें देख रहे थे, और वो बेचारा पीछे स्टूल में बैठा हुआ था और उसके हाथ में दो बड़े बड़े बैग्स थे जो किताबों से भरे हुए थे। तो मैंने कहा, सर आपने किताबें अभी ली हैं, अपने लिए ली है क्या आप, ये मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंड से ले रहे हैं और वहाँ की लाइब्रेरी में आप रखेंगे? कि नहीं, सब जाती किताबें हैं, जाती मतलब पर्सनल किताबें हैं, तो सब जाती किताबें हैं ये, और मैं खुद पढ़ूंगा। तो मैंने कहा, आप इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं सारी किताबें पढ़ने का? तो उन्होंने कहा, निकाल आता है दोस्त, और मैं बहुत ही स्लो रीडर हूँ, तो धीरे धीरे इनको मैं पढ़ूंगा। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आप मुझे कोई अच्छी किताब रिकमेंड कीजिए। तो हालांकि मैं तो उस वक्त शायरी की ही किताब ढूंढ रहा था, लेकिन मैं शायरी के अलावा इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने का भी बहुत शौक रखता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे जॉस्टिन गार्डर की सोफीज वर्ल्ड रिकमेंड करी। तो वो वहाँ उस वक्त मिली नहीं, तो वो हम मिली नहीं, तो हम लोग भागते हुए, क्योंकि बंद होने का टाइम आ रहा था, लास्ट डे था नेशनल बुक फेयर का, और 9 बज चुके थे, 9:15 हो रहे थे बल्कि, और बंद होने का टाइम आ रहा था। तो हम भागते हुए दूसरे वाले स्टॉल पे गए, और वहाँ पे वो बस किताबें समेट रहे थे अपने झोले में भर के निकल रहे थे। तो हमने कहा, भैया भैया बताइए वो मिल जाएगा, वो वाली किताब मिलेगी, इंग्लिश में है ये, जॉस्टिन गार्डर की सोफीज वर्ल्ड। तो खैर वो जो जो जिनकी शॉप थी वो तो थोड़ा सा बिजी थे समेटने में, तो जो मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, जो जनाब मेरे साथ थे, उन्होंने बेचारे ने खुद कहीं से झुक उक के ढूंढ के वो कहीं से निकाल ली वो किताब। और खैर फिर मैंने, कहने लगी ये फिलोसफी की किताब है और इसमें 14 साल की लड़की को एक मेंटर मिलता है, एक मेंटर जो उसको फिलोसफी की बातें बताता है, और ऐसी ऐसी बातें बताता है कि उसकी उसका जहन खुल जाता है, उसकी ज़िंदगी की तरफ जो सोच हैं, जो विचार हैं, जो ख्यालात हैं, वो बदल जाते हैं। तो मैंने कहा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मैंने फट से वो किताब वहाँ से उनके स्टोर से परचेज कर ली। असल मुझे ये कहना नहीं अच्छा लगता कि किताब खरीद ली, मैं कोई अच्छा लफ्ज ढूंढ रहा है, बट आई कुडंट फाइंड अ बेटर वर्ड। तो ये मुझे कहना अच्छा नहीं लगता कि किताब खरीद ली। मेरी ये औकात नहीं है कि मैं किताब खरीद पाऊँ, लिटरेचर साहित्य खरीद पाऊँ। तो खैर उस किताब को मैंने अपना बना लिया, और वहाँ से जो जनाब मुझे मिले थे जो झोला भर के किताबें ले आ रहे थे, उनके साथ मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद मुझे शायरी की किताबों का एक ज़खीरा दिखा। वहाँ पे रेख्ता की भी कुछ बुक्स रखी थी, और शायरी कैफ़े की शायरी, और ये फरत एहसास रेख्ता वाले, उनकी शायरी, और नासिर काज़मी की मुझे एक किताब मिली जिसके ऊपर लिखा था कि नासिर काज़मी उदासी बाल खोले सो रही है। मैंने सोचा ये वाली शायरी पढ़ने में मज़ा आएगा, फिर मैंने वो किताब ले ली। मैं सोच भी रहा हूँ कि आप लोग को आज नासिर काज़मी की ही पोएट्री सुनाऊँ। आज क्या मतलब, मैं कोशिश करूँगा कि आज ही मैं आप लोग के लिए ये पढ़ के मैं आप लोग को सुना दूँ, लेकिन इसके अगले एपिसोड में। ये तो एक तरह की वो वाली बात होगी, ये जर्नी है मेरी कि मैं नेशनल बुक फेयर में गया तो मैंने क्या क्या किया। मैं एक ही एपिसोड बड़ा सा बनाना चाहता था, कम से कम 1 घंटे का, लेकिन मैंने सोचा कि जो इस एपिसोड का इंट्रो है उसको मैं अलग रिलीज करूँगा, और जो मेन एपिसोड है इसको मैं अलग से रिलीज करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हिंदी उर्दू शायरी सीजन 2 के पहले एपिसोड का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट होपफुली आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसके बाद ही। तो सुनते रहिए मेरा पॉडकास्ट हिंदी उर्दू शायरी। मैं आपका दोस्त अमान जावेद, बहुत ही दिलकश, दिल फरेब, दिल तोड़ने वाली, दिल को जोड़ने वाली और दिल में अलग अलग हैरत अंगेज एहसास को पैदा करने वाली शायरी लाता रहूँगा आपके लिए। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, गाड़ी चला रहे तो ध्यान से चलाइए, किचन में खड़े होकर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, पढ़ाई के बाद अगर सुन रहे हैं तो चलिए शायद वापस अब पढ़ने का वक्त हो गया है, और अगर ऐसे ही टहलते हुए सुन रहे हैं फिर भी अपना ख्याल रखिए, कहीं पर भी हों इस दुनिया में इस जहान में अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छा पढ़ते रहिए और अच्छा बोलिए। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय। अगर आप भी पॉडकास्ट बनाते हैं और चाहते हैं कि मैं अपने हज़ारों दोस्तों तक जो मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं आपके भी पॉडकास्ट को ले जाऊं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। आइए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, बाकी अपनी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक कॉन्टैक्ट, आपका मैसेज आएगा तो बहुत खुशी होगी।